مومنین، یہ سورہ حج کی پہلی آیت پڑھی ہے، اور اس سے پہلے کہ تفسیر شروع کروں کچھ سورہ حج کے بارے میں میں آپ کو عرض کر دوں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی سورہ حج کو پڑھے گا تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے کہ اس نے جب سے دنیا شروع ہوئی تو قیامت تک جتنے لوگوں نے حج اور عمرے کی ہیں سب کا ثواب اس کو ملتا ہے. اتنا عظیم سورہ ہے یہ، اتنا عظیم سورہ ہے. اور یہ حج، سورہ حج نازل ہوا مدینہ میں جنگ بدر کے پہلے. تو جو پہلی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا ہے، اس کا ترجمہ اس طریق سے، یہ لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، یہ کہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو سرکار سفر میں تھے، تو سرکار نے جو اصحاب ان کے ساتھ ان سے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، پھر کہا کہ تم کو کچھ معلوم بھی ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ تو اصحاب نے کہا کہ اللہ کا نبی جانتا ہے کہ کیا ہوا. تو کہا گئے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ جہنم کا ایندھن پیش کرو. تو آدم کہیں گے کہ اللہ جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ تو کہا کہ ہر ہزار میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. تو اصحاب رونے لگے. تو سرکار نے کہا کہ اسی لیے انبیاء آئے کہ لوگوں کو ہدایت کریں حق کی، اور اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہاری اس میں فلاح ہے. پھر سرکار نے کہا کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ میری امت میں سے جو جنت میں جائیں گے اس کے ایک چوتھائی میری امت میں سے ہوں گے؟ تو اصحاب خوش ہو کے اللہ اکبر کہنے لگے. پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ کیا کافی نہیں کہ ایک تہائی جائیں گے؟ تو اللہ اکبر کے پھر نعرہ لگایا صاحب نے. پھر سرکار نے فرمایا کیا کافی نہیں کہ میری امت کے جتنے جنتی ہوں اس میں سے آدھے لوگ میری امت کے ہوں گے؟ تو سب صاحب نے نعرہ لگایا اللہ اکبر. تو ہم کو امید رکھنا چاہیے، امید پہ قائم رہنا چاہیے کہ ہاں ہزار میں سے ایک جنت میں جائے گا، لیکن ہم کو اللہ سے امید ہونا چاہیے کہ کیا ہم لوگ اس میں شامل ہوں اور اس کے لیے جد و جہد کریں. اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی حرج پیدا نہیں کرا، سختی نہیں ہے. یہ تو یہ ہے کہ بس شیطان نے جو کہا اور ہم نے سن لیا تو پھر مسئلہ ہے. اگر قرآن پڑھتے پڑھاتے اور قرآن کو اللہ کا سنتے تو شیطان کا سننا چھوڑ دیتے ہم، لیکن اگر ہم اللہ کا سننا بند کر دیں گے تو پھر شیطان کا بولنا تو 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے، وہ تو رکتا نہیں ہے، وہ تو کھلا دشمن ہے. یوم ترونہا تدہل کل مرضعات عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے واقعے کو دکھا رہا کس طرح سے ہوگا. جس روز تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں پاؤ گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے. البتہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا. یہ حالت ہوگی کہ جو عورت دودھ پلاتی ہوگی اس وقت وہ اپنا دودھ پلانا چھوڑ دے گی خوف کے مارے، کیونکہ جو زلزلہ ہوگا وہ اتنا سخت ہوگا. کیونکہ زلزلہ ابھی جو آتا ہے نا وہ 2 سیکنڈ کے لیے آتا ہے، 5 سیکنڈ کے لیے آتا ہے، وہ زلزلہ لمبا ہوگا. تو یہ خوف طاری ہوگا اس زلزلے سے کہ دودھ پلانے والی دودھ پلانا چھوڑ دیں گی، اور حاملوں کے حمل گر جائیں گے، اور لوگ باغ ایسے لگیں گے خوف میں، کنفیوژن میں اتنے ہوں گے کہ لگے گا کہ وہ انٹاکسیکیٹ ہیں نشے کی حالت میں، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے کیونکہ خوف سے کنفیوز ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس طرح کا سخت عذاب ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَاتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے ہیں اور ہر سر کا شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں. دیکھیں 999 لوگ کیسے ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ وی بلیو ان گاڈ، لیکن گمراہ. آپ دنیا میں پوچھیں کہ وی بلیو گاڈ، یس یس یس، لیکن گمراہ. اور کیا ہے کہ اپنے جو اپنے جھوٹے عقیدوں کو لے کے چلتے ہیں. علم تو ہوتا نہیں ہے, کتاب پڑھی نہیں ہوتی ہے, ہادی ان کا کوئی ہوتا نہیں ہے, بس اپنے حساب سے وہ اپنے عقیدے بنا لیتے ہیں اپنے حساب سے. اس طرح کے لوگ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے, مسجد میں مل جائیں گے, ہر جگہ مل جائیں گے, باہر بھی مل جائیں گے, ہر طرف ایسے لوگ ہیں. کبھی ایک دن قرآن کھل کے نہیں پڑھا ہوا, لیکن پورے عقیدے ان کے اپنے بالکل بنے ہوئے پکے ہے نا. من الناس میں, اچھا تو وہ پھر اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو شیطان ڈھونڈتا رہتا ہے, شیطان, اب وہ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں, شیطان کو ڈھونڈتا رہتا ہے کیونکہ انہوں نے علم چھوڑا ہے. اور کیونکہ بغیر علم کے تو انہوں نے علم چھوڑ دیا, اب شیطان ان کا ساتھی ہو جاتا ہے. اب اللہ نے تو ان سے بات کرنا بند کر دی, قرآن سے اللہ بات کرتا ہے, اہل بیت کے ذریعے اللہ بات کرتا ہے. اگر آپ قرآن اور اہل بیت چھوڑ دو گے تو پھر آپ کو شیطان پکڑے گا. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, ہر شیطان کی پیروی کرتے ہیں, پھر شیطان کو بہکاتا ہی چلا جاتا ہے, بہکاتا ہی چلا جاتا ہے, اور وہ کبھی سیدھے رستے پہ نہیں آتے. تو اللہ نے کیا کہا ہے شیطان کے بارے میں, اب اللہ نے سخت لفظ استعمال کیے ہیں, کتب علیہم انہ من تولاہ فانہ یدلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. اس کے بارے میں لکھ دیا گیا, اللہ نے کہا میں نے لکھ دیا شیطان کے بارے میں, اس ریٹن کہ جو بھی اسے دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ دکھائے گا, جہنم کے عذاب کی راہ دکھائے گا. یہ جو شیطان جو ہوتے ہیں نا, یہ شیطان انسان میں سی بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سی بھی ہوتے ہیں, دونوں سے ہوشیار رہنا. اسی لیے اللہ کا رسول ناس اتنی پسند ہے, شیطان انسان, شیطان جن سے اللہ بچائے, دونوں سے بچائے. کیونکہ پھر وہ اس کو جو اس کو دوست رکھے گا فإنه يضله, تو اس کو کیا پہلے گمراہ کرتا ہے اس کو, پھر اس کے بعد اس کو جلنے جہنم کی آگ کا راستہ دکھاتا ہے, وہاں لے کے جاتا ہے. 999 سب یاد رکھیں نمبر. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليه ما اهتزت وربت وأنبت من كل زوج بهيج. یہ لمبی آیت ہے, اس کو تھوڑے ٹکڑوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ. پر اے لوگوں, اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لوگ شک کرتے ہیں قیامت میں کیسے زندہ ہوں گے, تو اللہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہوتا ہے تو پھر اللہ کیا کہتا ہے آگے, تو یاد رکھو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے, سبسٹنس سے, اس کے بعد نطفے سے, پہلے تو ہم سبسٹنس مٹی ہوتے ہیں, پھر ہم نطفہ بنتے ہیں, پھر خون کے قطرے سے, پھر وہ جو بچہ ہوتا ہے جو اگر مائکروسکوپ میں دیکھو تو بلڈ کلاٹ دکھتا ہے, خون کے قطرے سے, پھر گوشت کے لو تھوڑے سے, پھر الگ الگ ایمبریونک سٹیج کے ڈیولپمنٹ اللہ بتا رہا ہے. پہلے تو نطفہ, زائگوٹ, پھر اس کے بعد بلڈ کلاٹ, اس کے بعد گوشت کا لو تھوڑا, جو تخلیق شدہ بھی ہوتا ہے اور بغیر تخلیق کے بھی. اب اس کا کیا مطلب, میں رک جاتا ہوں, تخلیق شدہ ہی ہوتا ہے اور بغیر تخلیق کے. ایک تو ایمبریو ہوتا ہے جو ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوتا. تو جو ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے وہ بچہ بن کر باہر آتا ہے, جو ڈیولپ نہیں ہوتا وہ مسکریج ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. تو معصوم ان کا قول یہ ہے کہ جو وہ نطفے بچے بن کر باہر نکلتے ہیں جنہوں نے عالم زر میں گواہیاں دی ہیں, وہ جو کہ عالم زر سے روحیں چلے آ رہی ہیں اور جو ان نطفوں میں داخل ہوئی ہیں, وہی نطفے بچے بن کر باہر نکلتے ہیں, باقی نطفے خارج ہو جاتے ہیں. اب میں یہاں رکتا ہوں, پھر انشاءاللہ آگے آیت پڑھیں گے, کیونکہ اس میں کچھ احادیث ہیں جو میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. سرکار فرماتے ہیں کہ कि जब 40 दिन हो जाते हैं तो नुतफा बनता है, वो 40 दिन बाद खून का कतरा बनता है अलक, और 40 दिन हो जाते हैं तो मुकदा बनता है, यानी गोश्त का लोथड़ा। फिर उसके बाद फरिश्ते आते हैं और उसमें रूह फूंकते हैं। फिर उसके लिए चार चीज लिख दी जाती है, उसका रिस्क, उसकी मौत, उसके अमल, और उसके लिए कि वो नेकुकार हुआ कि बदकार हुआ है, ये चारों चीज़ें लिख दी जाती है उसके लिए जब उसमें रूह फूंकी जाती है। तो इमाम रज़ा अलैहि सलाम भी फरमाते हैं कि जब चार महीने का बच्चा हो जाता है तो अल्लाह ताला दो फरिश्तों को भेजता है ताकि उसका रिस्क, उसकी मौत, और ये लिखे कि वो नेकुकार है कि बदकार है। फिर मैं तर्जुमा आगे चलता है इंशाल्लाह। जो तख्लीक शुदा होता और बगैर तख्लीक के भी, यहाँ तक पढ़ा था ना उन्होंने, ताकि तुम पर उस हकीकत को वाज़े कर दें। हम जिस नुतफे को चाहते हैं कि ख़ास वक्त तक रहमों में ठहराते हैं, फिर तुम्हें एक बच्चे की सूरत में निकाल लाते हैं ताकि तुम अपनी मुकम्मल जवानी तक पहुँचो, और तुम में से कुछ को पहले ही बुला लिया जाता है और किसी को बदतरीन उम्र की तरफ फेर दिया जाता है। बदतरीन उम्र क्या है? बुढ़ापे को बदतरीन उम्र कहा गया है। मासूम से पूछा कि वो कौन सी उम्र है? मासूम ने कहा 100 साल। क्या होता है बदतरीन उम्र की? होती है कि जो हमारा सबसे बड़ा सरमाया होता है इल्म, वो हमसे चले जाता है। ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं, कुछ सीखें, वो भूल जाता है इंसान। इससे ज़्यादा तकलीफ़ क्या होगी? इन बूढ़े में और बच्चे में कोई फ़र्क नहीं होता है हालांकि, लेकिन बच्चे का क्या होता है कि उसके जवान पेरेंट्स होते हैं और उम्मीद रहती है कि वो एक दिन बड़ा होगा, और जो बूढ़ा इंसान होता है उसके लिए कोई उम्मीद नहीं होती है, उसका तो डाउनफॉल ही होता है। तो उस पर जितना रहम किया जाए कम है, और फिर भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि बूढ़ा है तो उसको थोड़ा बिहेव करना चाहिए, बढ़ता है उसका चाव। लोगों में ये भी रहता है कि ये तो बूढ़ा है, इसको चाहिए कोई ढंग से रहे, लेकिन वो लोगों को क्या मालूम कि उसके दिमाग में से कोई ब्रेन सेल नहीं बचे। लेकिन जो लोग मुत्तकी होते हैं, परहेजगार होते हैं, या किताबें पढ़ते हैं, या जो कि ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं, उनका हाफजा बना रहता है। इसलिए हमको ज़रूरी है कि हम लोग हमेशा कुरान पढ़ते रहे, हमेशा इल्म हासिल करते रहे, ताकि हमारा हाफजा बना रहे। ताकि देखा ना आपने आयतुल्ला जो होते हैं 90+, वो फिर भी उनका दिमाग बिल्कुल सही चलते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला दिखा देता है इस दुनिया में नेकुकारों का अजर ज़ाया नहीं करता अल्लाह। हमको भी चाहिए कि हमारा शौक़ रहे कि हमेशा हम कुरान हिफ्ज़ करते रहे, हदीस हिफ्ज़ करते रहे, किताबें पढ़ते रहे, इंशाल्लाह हाफजा नहीं जाएगा, अल्लाह पे तवक्कल रखे। फिर मैं आगे तर्जुमा जारी रखता हूँ। तुम में से कुछ को पहले ही बुला लिया जाता है और किसी को बदतरीन उम्र की तरफ फेर दिया जाता है ताकि वो इल्म के बाद कुछ जानने के काबिल न रहे जाए और तुम बिल्कुल भूल जाओ। ये एक तरह से जो आजकल होता है ना डिमेंशिया की मिसाल है। डिमेंशिया किसको कहते हैं? जो बूढ़े बिल्कुल भूलने लगते हैं। और तुम ज़मीन को खुश पाते हो और जब हम उस पर पानी बरसाते हैं तो वो लहलाने लगती है और नशो वो नुमा पाती है और हर किस्म के खुश नुमाया नबातात उगाती है। फिर अल्लाह ने कहा ज़मीन का कहा है, इसी तरह अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि क़यामत दिन के ज़िंदा होंगे, तो अल्लाह ने सारी मिसालें दी, आखिरी में खुश ज़मीन की मिसाल दी कि जब पानी बरसता है तो वो सूखी ज़मीन किस तरह लहलाने लगती है, खुशनुमा हो जाती है। उसमें क्या है? ज़ौजिन बहीज लफ्ज आया है। ज़ौजिन बहीज मतलब के दरख्तों के जोड़े पेयर्स, मतलब ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि किस तरह से पॉलिनेशन होता है, मेल प्लांट फीमेल प्लांट। उस ज़माने में तो बात वाज़े नहीं हुई थी, आज वाज़े हुई पॉलिनेशन, अब समझ में आया। तो कुरान की गहराइयाँ मौला मुत्तकी ने फरमाया ना कि हर दौर में तफसीर कुरान बदलेगी क्योंकि इल्म ज़्यादा आ जाएगा, तब तफसीर बदल रही है कि पॉलिनेशन का मामला है जो अल्लाह ने उस वक्त बता दिया। ताकि हम इस बात को बावर करें कि क़यामत के दिन आप कैसे उठेंगे, जब अल्लाह ताला की कुदरत है मिट्टी से इंसान को चला के बना देता है, जिस तरह से खुद ज़मीन को लहलाने लगता है, वही अल्लाह ताला बताना चाहता है कि मैं हर चीज़ पे कादिर हूँ। फिर अल्लाह फरमाता दाले कभी अन अल्लाह हुल हक व अन्नहु युहिल मौता व अन्नहु अला कुल्ले शैइन कदीर। ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है और वही मुर्दों को हयात बख्शता है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लाह हक है, उसकी हक की वजह से इस कायनात में हक जाहिर हुआ। ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को किसने बनाया? हक ने बनाया, पेट्रोत ने। जिस तरह से हक ने हमको पैदा करा, उस हक ने अल्लाह ने हमको पढ़ा करा, बच्चे से बाहर निकाला और रिस्क पैदा करा ज़मीन से, वो हक खुदा है। उसका सिस्टम चल रहा है पूरी कायनात। ये जो सिस्टम है हमारा सिस्टम है या प्लांट सिस्टम है, ये सिस्टम पूरे यूनिवर्स के सिस्टम से कनेक्टेड है और ये सब सर्वाइव कर रहा है ट्रूथ ऑफ अल्लाह के, अल्लाह जो हक उसकी वजह से कर रहा है। जो इस तरह से जो मिट्टी से बना के चलता फिरता इंसान बना सकता है, जो कि मुर्दा ज़मीन से लहलाते हुए रिस्क निकालता है, मतलब पौधे निकालता है और ज़मीन शादाब हो जाती है, फिर उस पर से रिस्क निकलता है, वही अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। वही अल्लाह कह रहा है मैं कादिर हूँ हर चीज़ पे। कादिर मतलब जिसने कि जो कुछ नहीं था कायनात बना दी, वो हर चीज़ पे कादिर है। वो इशारा ये कर रहा है कि तुम मैं कादिर इस पे हूँ कि तुमको दोबारा मैं ज़िंदा करके तुमको मैं क़यामत के दिन खड़ा कर दूँगा, ताकि तुम अपनी आगे की हयात देख लो, जन्नत और जहन्नम का सफ़र यहाँ से बैठ के देख लो, कि देखो मैं ऐसा करता हूँ तो वो भी होने वाला है। मैंने तुम्हें यहाँ खेलकूद के लिए नहीं बनाया, मैंने एक ख़ास मकसद के लिए बनाया, ताकि मैं तुम्हें आजमाऊँ कि तुम्हें अमल में तुम्हें कौन बेहतर है। सूरह मुल्क पर ताकि मैं आजमाऊँ तुम्हें अमल में कौन बेहतर है, इस खेलकूद के लिए तुमको नहीं बनाया है। फिर आगे अल्लाह फरमाता है अन सआत आतीतुल्ला रैबा फीहा व अन अल्लाह यबअथु मन फिल क़ुबूर। और क़यामत आकर रहेगी, इसके आने में किसी शक की गुंजाइश नहीं है, और ये कि अल्लाह बाशिंदगान कब्र को दोबारा उठाएगा। अल्लाह ताला कहता है कि ये हमत आकर रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें शक न कर लेना। जो कब्रों में है अल्लाह उनको दोबारा उठाएगा। शक नहीं होना चाहिए हमको, इसलिए कुरान लगातार पढ़ते रहें कि अल्लाह हक दिखने लगे। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो हक दिखेगा कि ये देखें आप, ये इस तरह से पॉलिनेशन होता है, ये इस तरह से जायगोट बनता है, ये इस तरह से अबॉर्शन हो जाते हैं, मतलब मिसकैरेज हो जाते हैं, इस तरह से बच्चा पूरा बन के निकलता है, कोई जवानी में मर जाता है, कोई बुढ़ापे में ख़राब उम्र तक पहुंच जाता है। ये हक तो है ना। अब इसके बाद काय का शक बचा है? हम रोज़ ये तमाशे होते देखते ना ज़िंदगी, उसके बाद काय का शक बचा है? तो शैतान जो है ना खुला दुश्मन, वो वसवसे पैदा करता है, उल्टे सीधे सवाल पैदा करता है। अल्लाह ताला ने उल्टे सीधे सवालों से मना करा है। जो इल्म दिया उसको सीख लें वो बड़ी बात है, ये कुरान जो दिया उसको पढ़ने और समझने की बड़ी बात है। जिन लोगों के दिल में फितना होता है उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, अरे भाई तुमने कुछ पढ़ा तो नहीं, वो उल्टे सीधे सवाल पढ़ने बैठते। तुम्हारे ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम खुद भी कुरान पढ़ो, मौके मायते पढ़ो, अल्लाह में ईमान ले के आओ। ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير। اور انسانوں میں وہ بھی ہیں جو بغیر علم ہدایت اور روشن کتاب کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں। ثانی فيه ليدله عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق। तकब्बुर की वजह से हक से पहलू तही करते हैं ताकि वो खुदा के रास्ते से भटका दें, उसके लिए दुनिया में रसवाई है और क़यामत के दिन हम उसे जलाने वाले अज़ाब का मज़ा चखाएंगे। दाले के बीमा कदमत यदा का व अन्नल्लाह लैसा बिज़ज़्ला मिन लिल अबीद। ये तुम्हारे हाथों ने खुद वहाँ तक भेजा है और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं ढाता। ये तीन आयतें एक साथ पढ़ी मैंने। तो ये जो आयत है मीज़ान के हिसाब से, ये लीडर्स के लिए आयत है, जो गुमराह लीडर जो होते हैं उनके बारे में आयत है। गुमराह लीडर क्या होता है? वो मिनन्नास है, वो लोगों में सारा जो झगड़ता अल्लाह के बारे में बग़ैर इल्म के। उसके पास इल्म नहीं होता, न उसके पास हिदायत होती है और न किताब होती उसके पास। और वो जब ये चीज़ें उनके पास, जब वो झगड़ता बगैर इल्म के, बगैर हिदायत के, बगैर किताब के, ताकि तकब्बुर करे, खुद हक से पहलू करे, पहलू तही करे, और खुदा के रास्ते से भटका है, खुद तो जाहिल है, दूसरों को भी लेके जाता है, इसलिए कि दुनिया में उसके लिए रुसवाई है और क़यामत के दिन हम उसे अजाब, जलाने वाले अजाब की सजा पहुंचाएंगे। और ये क्या अल्लाह ने कहा कि जब मैं दोज़ख में डालूंगा तो कोई जुल्म नहीं होगा उन पर, ये तुम्हारे हाथों ने खुद वहां तक भेजा है, और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं उठाता है। अब तुमने खुद अपने हाथों से हरकत करी है, क्या हरकत करी है, इल्म हासिल नहीं करा, हिदायत हासिल नहीं करी, किताब हासिल नहीं करी, अब तीनों चीज़ें नहीं, तो अब क्या पूरा जाहिल शैतान के गिरफ्त का इंसान हो जाता है, और खुद शैतान हो जाता है, और लोगों को भी अपने साथ लेके चलता है, लोगों को लेके जाता है। ज़्यादातर जो गिरोह हैं गुमराहों के, इस दुनिया में ज़्यादातर गिरोह जो गुमराहों के गिरोह हैं, हक गिरोह अहले बैत का है जो कुरान के साथ है, बाकी जो जिसने अहले बैत की रस्सी छोड़ी, कुरान की रस्सी छोड़ी, वो गुमराहों का गिरोह है। क्यों? तो इसमें इसकी थोड़ी गहराई बयान कर दूं कि वो मिनन्नास है, मैं युजादिलु फिल्ला भी गैर इल्मिन, इल्म क्या है इसमें कि मंतिक होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए इंसान में, बगैर मंतिक और लॉजिक के आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। बहुत से लोग बगैर लॉजिक की बात करते हैं, जज्बात पे बात कर लेते हैं, बगैर सोच की बात करते हैं, उनको समझाओ तो समझ में नहीं आता कि उनकी लॉजिक सही नहीं है, बगैर इल्म और बगैर हिदायत की करते हैं। हिदायत कहाँ से आती है? हिदायत अल्लाह के पास से आती है, और हिदायत आती है अल्लाह के वलियों की तरफ से। अगर आपके पास अल्लाह के वली नहीं है, हादी नहीं है, अगर आपने हादी नहीं पहचाना जो अल्लाह ने जो भेजे, हादी पैगंबरान जो भेजे, उसके बाद अहलुल बैत को हादी बना के भेजा, अगर वो हादी नहीं है तो गुमराह हो जाओगे। उसके बाद क्या, उसके बाद अल्लाह की हिदायत आती है हादी के ज़रिए से, फिर उसके बाद और रोशन किताब। जब इंसान के पास मंतिक आती है, हिदायत आती है अल्लाह की तरफ से, तो अल्लाह ताला ज़रूर अहले बैत के सदक़े में आपके दिल पे कुरान को रोशन कर देगा। ये कुरान ऐसा है कि अगर बगैर अहले बैत के पढ़ेंगे आप, तो आपको गुमराह कर देगा, क्योंकि आपको इसीलिए सरकार ने कहा था कि मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, किताब और अहले बैत, ये दोनों जुदा नहीं हो सकती। अगर आज मुसलमानों को यही कुरान पढ़ के लोग टेररिस्ट बन गए हैं, लोगों को कत्ल करते हैं ना, वो लोग गुमराह तरीन लोग हैं जो कि इस कुरान को पढ़कर मासूम लोगों की जाने लेते हैं इस तरह से। क्योंकि इसका मतलब ये है कि हादी होना ज़रूरी है, वरना आप इसी कुरान से आप जहन्नम में चले जाएंगे, अगर आपकी उसकी तफसीर समझ में नहीं आएगी। कहना क्या चाहता अल्लाह, तो ये ज़रूरी है कि कुरान को हादी के ज़रिए समझेंगे तो दिल में किताब रोशन हो जाएगी, जैसे इमाम खुमैनी के दिल में किताब रोशन हुई थी, इमाम खुमैनी के दिल में किताब रोशन हुई थी ना, तो उन्होंने आज इतना बड़ा इनकलाब लेके आया दुनिया में। तो ये दिल में रोशन करना किताब हक के ज़रिए, हिदायत के ज़रिए। तो ज़िक्र अहले बैत का करना इस वक्त ज़रूरी है कि जो करबला जो हुई थी, करबला क्यों हुई थी? करबला इसीलिए हुई थी कि एक गिरोह जाहिल गिरोह था, जिसने क्या करा था कि ना तो दानिश थी उनके पास, ना उनके पास हिदायत थी, ना उनके पास किताब थी। और यजीद ने इस बात की गवाही दरबार यजीद में खुद दी, जबकि अहलुल बैत वहाँ आए थे और अहलुल बैत के सामने उसने तकब्बुर दिखाया, और तकब्बुर दिखा के कहता है कमबख्त कि ये सब बनी हाशिम का ड्रामा था, न तो कोई वही आई थी, न फरिश्ता आया था, सिर्फ मुसलमान के भेस में बैठा था ताकि लोगों को हुकूमत करे। और इसी तरह से ये झगड़ा शुरू हुआ था, और मौला जो आए थे करबला में, तो पहले मैंने शुरू में आपको हदीस अर्ज करी थी कि 1,000 में से 999 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, 73 फिरके हो जाएंगे मुसलमान का, एक जन्नत जाएगा। मौला ने कहा था मैं करबला जो जा रहा हूँ तो कौम की इस्लाह करने जा रहा हूँ। मौला को ये डर था कि कौम जहन्नम में नहीं चले जाए, इन जाहिलों के साथ साथ में जहन्नम न चले जाए, مولا نے جو جنگ کری تھی صرف ہماری بقا اور ہماری اصلاح اور ہماری نجات کے لیے کری تھی. یا مولا آپ شہید ہو گئے, آپ شہید ہو گئے کہ ہم جہنم سے بچیں, آپ شہید ہو گئے کہ ہم کو ہدایت ملے. مولا آپ کا ہم احسان کبھی نہ بھولیں گے, نہ آپ کے اولاد کا احسان کبھی بھولیں گے, نہ آپ کے اصحاب کا احسان کبھی نہیں بھولیں گے مولا. اور مولا امام الزمہ آئیں گے تو ہم ان کی ضرور نصرت کریں گے. اللہ القوم الظالمین.